नमस्कार, दी प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आपको सुना रहा हूं इस हफ्ते का नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें शेखर गुप्ता कहते हैं कि बीजेपी 2024 की नहीं बल्कि 2029 के लिए रणनीति तैयार कर रही है। अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गति से यात्राएं, उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं और दूर दराज की जगहों में भाषण देते घूम रहे हैं, वे सब यही संकेत दे रहे हैं कि उन्होंने चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। तो आप निश्चित रूप से यही सवाल करेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है? क्या हमें यह मालूम नहीं है कि चुनाव अभियान शुरू हो चुका है? आखिर चुनाव के कुछ ही हफ्ते तो बाकी रह गए हैं। आपका सवाल जायज़ है, सिवाय इसके कि हम जिस अभियान की बात कर रहे हैं वो 2024 का चुनाव अभियान नहीं है। इस चुनाव के नतीजे पर दस्तखत सीलबंद करके तो मोदी शाह की भाजपा ने अपने लॉकर में रख दिया है, इसलिए हम 2029 के चुनाव अभियान की बात कर रहे हैं। इसकी वजह केवल यह है कि भाजपा के दो दिग्गज नेताओं के सार्वजनिक बयान इसके प्रमाण हैं। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दरभंगा में बयान दिया कि देश से गरीबी मिटाने के लिए मतदाता नरेंद्र मोदी को केवल तीसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार भी चुनने का संकल्प लें। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने एक मीडिया सम्मेलन में कहा कि विपक्ष को अब 2034 के बाद के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए। इन दोनों बयानों को जोड़ दीजिए तो इसका अर्थ यही निकलेगा कि 2029 में मोदी अभूतपूर्व रूप से लगातार चौथी बार चुनाव लड़ेंगे। आप में से जो लोग अभी भी ये मान बैठे हैं कि भाजपा में 75 की उम्र को सेवानिवृत्ति की उम्र मानने का नियम चलेगा, वे ज़रा गौर कर लें कि हेमा मालिनी को 75 की उम्र में मथुरा से तीसरी बार चुनाव का उम्मीदवार बनाया गया है। आप बीजेपी वालों से जब इस बारे में सवाल करेंगे तो वे उल्टे आपसे यही सवाल करेंगे कि आपसे किसने कहा कि बीजेपी में कोई उम्र सीमा तय की गई है। बहरहाल 75 की उम्र में हेमा मालिनी को चुनावी टिकट साफ संकेत करता है कि 75 की उम्र को कोई कट ऑफ उम्र नहीं बनाया गया है। अगर वे इस उम्र में चुनाव लड़ सकती हैं तो 2029 में 79 की उम्र के हो चुके मोदी अगर चुनाव लड़ें तो भला किसे आपत्ति हो सकती है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज जो उम्र है उससे तो तब मोदी 2 साल छोटे ही होंगे और डोनाल्ड ट्रंप से 2 साल बड़े होंगे। अगर इनमें से कोई एक नेता इस पकी उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है तो मोदी यहाँ प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? वैसे भी राजनीति में उम्र की सीमा कब लागू हुई है? यहाँ तक कि चीन में भी, जहाँ कम्युनिस्टों ने युवा नेतृत्व की खातिर उम्र सीमा को जो सख्त नियम लागू किया था उसे शी जिनपिंग की खातिर बदल दिया। यहाँ पर मुझे आपको 2007 की फिल्म जानी गद्दार में धर्मेंद्र के शानदार किरदार के बारे में बताने का मोह हो रहा है। इस फिल्म में उन्होंने 3 ठगों में से एक ठग की भूमिका निभाई। उसका एक साथी जब चकित होकर पूछता है कि इस उम्र में भी वो इतने बुरे काम कैसे कर रहा है तो उसका जवाब होता है कि यह उम्र की बात नहीं है, माइलेज का मामला है। माइलेज वाले नेता मानते हैं कि वे हमेशा बने रह सकते हैं। शी बाइडेन ट्रंप को देखिए, एर्दोगन और पुतिन तो आगे बढ़ ही रहे हैं और अब मोदी को लेकर हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हैं। निश्चित मानिए कि 2029 में आप मोदी को अपनी चौथी पारी के लिए चुनाव प्रचार करते देख सकते हैं। राजनाथ सिंह और अमित शाह के बयानों से ज़्यादा प्रमाण इन तथ्यों में मिलेगा कि मोदी आज कहां कहां और किस तरह प्रचार कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि वे तमिलनाडु और केरल को कितना समय और कितनी ऊर्जा दे रहे हैं। तमाम संशयवादी लोग और डीएमके के नेता भी अनौपचारिक बातचीत में कबूल कर रहे हैं कि भाजपा वहां अपने बूते भले कोई सीट न जीते मगर उसका वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ सकता है। कुछ लोग तो उसे 15-17% वोट मिलने की बातें भी कर रहे हैं। इस बार उसे भले कोई सीट न मिले मगर एक बार जब आप एक दायरे में आ जाते हैं तो आपने गति पकड़ ली है, तब 2029 में खेल ज़रूर कर सकते हैं। भारत में परिवार केंद्रित दलों का इतिहास कहता है कि परिवार की तीसरी पीढ़ी तक आते आते वे अपनी काफ़ी शक्ति गंवा चुके होते हैं। उदाहरण के लिए आप कांग्रेस से शुरू करके बाकी दलों को इस सूची में शामिल कर सकते हैं। तो क्या उदयनिधि के नेतृत्व में डीएमके अपवाद साबित होगी? बाकी दलों का जो हाल हुआ उस पर भाजपा नज़र डाले तो उसे तमिलनाडु में अपने लिए काफ़ी जगह बनती दिखेगी। खासतौर से इस तथ्य के मद्देनज़र कि द्रविड़वाद की दूसरी दावेदार AIADMK टूट चुकी है और पस्त हो चुकी है। डीएमके के समर्थकों का कहना है कि बात केवल परिवार की नहीं बल्कि विचारधारा की है जो व्यक्ति से परे भी कायम रहेगी, लेकिन भारतीय राजनीति में अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। विचारधारा को तो छोड़िए, धर्म भी परिवारों के पतन को रोक नहीं पाया है। भारत में धर्म पर आधारित एकमात्र दल शिरोमणि अकाली दल को देख लीजिए। इसका संविधान कहता है कि इसका अध्यक्ष वही बन सकता है जिसने सिख धर्म को अपनाया हो। देखिए कि जब यह परिवार केंद्रित दल नहीं था तब क्या था, और आज परिवार की दूसरी पीढ़ी के नेतृत्व में ये किस हाल में है। इसलिए मोदी आज तमिलनाडु में जो अभियान चला रहे हैं उसे हम 2029 के लिए तैयारी के रूप में और मोदी भाजपा को तब वहाँ कम से कम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देख रहे हैं। केरल मोदी के लिए दूसरा अवसर प्रस्तुत कर रहा है। गौर कीजिए कि भाजपा वहाँ के ईसाई समुदाय की ओर किस तरह लगातार अपना हाथ बढ़ा रही है। इस समुदाय का सुनिश्चित वोट कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF की राजनीति का आधार है, लेकिन UDF के दूसरे वोट बैंक मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय के बीच पुराने संदेह कायम हैं। अगर कुछ ईसाई वोट भाजपा की ओर गए तो मुस्लिम वोट वामदलों की ओर मुड़ सकते हैं, क्योंकि वे कांग्रेस UDF को कमज़ोर होते देख रहे हैं। तब BJP के लिए काफ़ी जगह बन जाएगी। इसी उम्मीद में मोदी वहां अपना अभियान चला रहे हैं और उन नेताओं को अपने साथ ले रहे हैं जिन्हें कांग्रेस में होने की उम्मीद की जाती है। मसलन कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों AK एंटनी और K करुणाकरन के क्रमशः बेटे और बेटी। सो मोदी केरल में 2029 के लिए अभियान चला रहे हैं। BJP जिस तरह ताबड़तोड़ गठबंधन बना रही है उस पर गौर कीजिए, इनमें दीर्घकालिक रणनीति दिखेगी। आज भाजपा उन दलों को अपने साथ जोड़ रही है जो पहले से ही पतनशील हैं और सौदेबाजी में कमज़ोर पड़ते हैं, जिनके पतन को और तेज़ किया जा सकता है और भाजपा उनकी जगह काबिज हो सकती है। इस रणनीति को निरपवाद रूप से स्पष्ट करने के लिए हम आपको पूरी सूची पेश कर सकते हैं। BJP ने असम में 2016 में असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन करके चुनाव जीता और बाद में BPF का पत्ता काटकर दूसरी जनजातीय पार्टी प्रमोद बोरो के साथ नेतृत्व वाली यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल को साथी बना लिया। 2022 में काफ़ी कमज़ोर हो चुकी BPF इस गठबंधन में वापस आ गई, जबकि AGP भी अपने मूल स्वरूप की छाया भर रह गई। ऐसा ही बिहार में भी हुआ। भाजपा ने नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया। विधानसभा चुनाव में चिराग ने खुद को मोदी जी का हनुमान बताते हुए JDU के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, और अब भाजपा JDU के सांसदों को तोड़ने में लगी थी तो नीतीश के पास फिर से दल बदल करके वापस लौटने के सिवाय कोई उपाय नहीं रह गया। जो भी हो, अगले चुनाव में वे और कमज़ोर होकर ही सामने आएंगे। गठबंधन का यही खेल आंध्र प्रदेश और हरियाणा में भी चल रहा है। आंध्र में कमज़ोर हो चुकी TDP 2029 में परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व में और ज़्यादा कमज़ोर ही पड़ने वाली है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की JJP तो लगभग खत्म हो चुकी है, और महाराष्ट्र में भी पुरानी सहयोगी शिवसेना 2 टुकड़े हो चुके हैं, जबकि नई सहयोगी NCP से टूटे घटक का भाजपा के बिना कोई भविष्य नहीं है। इन तमाम बातों का कुल जमाजोड़ आपको स्पष्ट कर देगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि 2029 के लिए मोदी भाजपा का चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। अब विपक्ष क्या करेगा, ये जानने के लिए इस कॉलम पर आगे भी नज़र रखे रहिए। सुनने के लिए धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे प्रिंट पॉड के एक और एपिसोड के साथ। नमस्कार।